कहीं कुरआन की तिलावत जहरा, कहीं ईमां की हरारत जहरा, कहीं काबे की जलालत जहरा, कहीं कुदरत की मशीयत जहरा। सारी दुनिया तुझे खातूने जिना कहती है, सारी दुनिया तुझे खातूने जिना कहती है, इंतहा ये है रिसालत तुझे माँ कहती है। मोहतरम और अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। इंशाल्लाह कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ नाज़रीन, शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अय्याम शहादत के हवाले से हमने कुछ प्रोग्राम तरतीब दिए हैं और हर रोज़ हम इस प्रोग्राम का एक हिस्सा आपके लिए पेश करेंगे। तो इस प्रोग्राम में मैं आपको कुछ थोड़ी सी तफसील बताती चलूं कि शहज़ादी कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत और मख़सूसन आपकी ज़िंदगी में उन तरबियती नमूनों को पेश करने की कोशिश करेंगे कि जिनकी बिना पर आपको उस्वा कहा गया। तो आज के इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि उस्वा के क्या मानी हैं। इसके लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है इस्लामिक स्कॉलर मोहतरमा तस्नीम फ़ातिमा रिज़वी को कि वो हमें इस सिलसिले में कुछ बताएं और हमारे लिए कुछ वाज़े करें कि उस्वा के क्या मानी हैं। इंशाल्लाह उसके बाद के फिर हम आगे प्रोग्रामों को लेकर चलेंगे। तो जी मोहतरमा तस्नीम, आप इस सिलसिले में क्या बताएँगी?
अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं भी आप सबकी खिदमत में ताज़ियत और तसलियत पेश करती हूँ जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत की। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना अमल है और जिस तरह के जाहिर सी बात है हम अपनी ज़िंदगियों में जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को अपने लिए नमूना समझते हैं, ज़रूरत इस बात की है कि हम इस पर अच्छी तरह बात करें और इसका जायज़ा लें। तो आपका भी शुक्रिया कि जिन्होंने अच्छा प्रोग्राम तरतीब दिया और एक अच्छा मौजू जो है वो ज़ेर बहस लाया। जहाँ तक बात आपके सवाल से है उस्वा कामिल से क्या मुराद है, तो देखिए उस्वे का लफ्ज़ जो है ना ये एक वसी मायना रखता है। इसको हम आइडियल के मायनों में ले सकते हैं, मिसाल है, नमूना है, उल्गू है, एक पैटर्न है। यह यानी इसका मतलब यह है कि हमारे सामने किसी की ज़िंदगी ऐसी हो कि जिसको हम देखकर अपनी ज़िंदगी के तौर तरीक़ों को निखार सकें। और कामिल कहते हैं एक बिल्कुल मुकम्मल चीज़ को जो हर लिहाज से मुकम्मल हो। लिहाजा उस्वा कामिल का मतलब यह है कि एक ऐसी शख्सियत जिसका किरदार हर मैदान में इल्मी है या इबादती है, ज़ाती है या इज्तिमाई है, मुआशरती है, सियासी है, इक्तिसादी है, हर मैदान में इंसान उससे अपनी ज़िंदगी के लिए दर्स ले सके। तो लिहाजा ऐसे नमूने जो तारीख में हमें नज़र आते हैं जो हर लिहाज से इंसानों की रहनुमाई करते हैं उनको हम उस्वा कामिल कह सकते हैं।
तो यहाँ पे सवाल ये है कि क्या उस्वा बनाना ज़रूरी है?
जी जहाँ तक बात यह है कि क्या बग़ैर उस्वा की ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती, और बहुत सारे लोग शायद ये समझते हैं कि उन्होंने आज तक किसी को अपना आइडियल बनाया ही नहीं है और फिर भी वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार तो नहीं, हम ये कह सकते हैं कि उस्वा बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बग़ैर ज़िंदगी गुजर नहीं सकती कामयाबी के साथ। और जो लोग ये समझ रहे होते हैं कि वो बग़ैर आइडियल बनाए ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं कामयाबी के साथ तो वो भी सख्त इश्तबा में होते हैं क्योंकि बिल आखिर वो किसी ना किसी को अपना आइडियल बना रहे होते हैं, चाहे वो उसको आइडियल के नाम से मुतारिफ़ ना करवाएं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वो जिसको भी अपनी ज़िंदगी का सरमश्क बना रहे हैं या जिससे दर्स ले रहे हैं या जिसका जैसा बनना चाह रहे हैं या जिसकी कामयाबी से मुतासिर होकर ख़ुद अपने लिए एक रास्ता मुअय्यन कर रहे हैं, दर हकीकत वो उसको अपना आइडियल ही बना रहे होते हैं। तो इसकी ज़रूरत इसलिए है कि इंसान जो फितरतन कमालजू है, कमाल को पसंद करता है और ख़ुदा ने उसको ऐसा खल्क किया है कि उसको तदरीजी तौर पर कमाल तक पहुंचना है। वो एक पत्थर नहीं है जिसको उठा के अगर ऊंचाई पर रख दिया जाए तो वो बुलंद हो जाता है। और ये जो कमाल इंसान अपनी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता हासिल करता है ये अपने आमाल से और अपने किरदार से करता है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि वो एक अपने अमल के अंदर से गलती निकाल दे। अगर उसने अपने अमल और किरदार में कुछ ऐसे कामों को अंजाम दिया जो गलत थे तो वो अपने कमाल तक नहीं पहुंच सकेगा। लिहाजा ऐसे अफराद को फॉलो किया जाता है जो ख़ुद कमाल तक पहुंच चुके हों, और फिर हम उनकी ज़िंदगी को सामने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, अपनी ज़िंदगी के लिए जो दर्स उठाते हैं और उनको फॉलो करते हैं, उनकी शख्सियत और उनकी बातों और उनके कामों को, इसी को हम नमूने अमल बनाना कहते हैं। तो ये ज़रूरी है।
जी, तो यहाँ पे जैसे कि आपने ये बताया कि मसलन नमूने अमल बनाना ज़रूरी है या उस्वा बनाना ज़रूरी है या किसी भी शख्सियत को आइडियल बनाना ज़रूरी है, तो यहाँ पे ये सवाल जहनों में आता है कि क्या ज़रूरी है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को ही नमूने अमल बनाया जाए? इस पे आप थोड़ी सी अगर वजाहत कीजिएगा।
देखिए जी, अगर हमारे उसवा और आइडियल बनाने का एक मकसद है और वो ये है कि हम कमाल तक पहुंचना चाहते हैं, तरक्की हासिल करना चाहते हैं, कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो फिर हम मजबूर हैं एक ऐसी शख्सियत को अपने लिए नमूने अमल बनाएं जो ख़ुद कमाल तक पहुंच चुकी हो, जिसमें गलती ना हो, जो बेहतरीन और कामयाब ज़िंदगी गुजार चुकी हो। तो इसमें अगर हम जायज़ा लेंगे तो तारीख़ की तमाम शख्सियात, हाल आज के भी दौर की तमाम शख्सियात, यानी गुज़िश्ता से आज तक के दौर में, हमें जनाब फ़ातिमा से ऊपर कोई खातून दूसरी नज़र नहीं आएंगी। तो अगर हम अपने नमूने अमल को एक हदफ़ के तहत बना रहे हैं तो उसमें जनाब फ़ातिमा के सिवा कोई दूसरा है नहीं। लिहाजा जब तक जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को ख़वातीन अपनी ज़िंदगी के अंदर नमूने अमल नहीं बनाएंगी, तब तक वो जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की तरह एक कामयाब ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगी। और जिस मैदान में भी आप जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के नमूने को ले लें, उनकी ज़िंदगी और उनकी सीरत को ले लें, हम ये देखेंगे कि जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने साबित किया है तारीख़ में इस बात को कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ऐसी ज़िंदगी गुजारा है जिसकी इंसान हसरत करता है, यानी जो कमाल का औज है। दूसरे नंबर पे ये कि कुरान मजीद ने जो हमें नमूना पेश किया है वो रसूल अल्लाह का पेश किया है, अम्बिया का पेश किया है, सूरह मुमतहाना में जैसे हज़रत इब्राहिम को नमूना बताया गया है या उन लोगों को बताया गया है जो साहिबान ईमान हैं और अम्बिया पर ईमान लेकर आए सच्चे दिल से। तो इसका मतलब ये है कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो इंसान जो ख़ुद खुदावंद आलम की बंदगी और इताअत के उरूज पर पहुंच गया और उसने कामयाब ज़िंदगी गुजारी, वही नमूना अमल बन सकता है। तो हमें नज़र आता है कि बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा नबी की गोद में परवरिश पाई, उन वो नबी के बदन का हिस्सा है, बिज़ातो मिन्नी की सनद पाई है उन्होंने, साथ साथ वो नबी करीम का खून है, उनका गोश्त और खून नबी का गोश्त और खून है, उन्होंने नबी के ज़ेर साया तरबियत पाई है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कामयाबी को साबित करके भी दिखाया है। लिहाजा जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के अलावा कोई दूसरी खातून इस मकाम पर आ ही नहीं सकती। बकौल अल्लामा इकबाल के मज़रए तस्लीम रहा हासिल बतूल, माँ दरान रहा उसवे कामिल बतूल।
लेकिन यहाँ पे अब एक सवाल ये है कि जैसे आजकल की ख़वातीन हैं तो सब जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अजीम शख्सियत से और आपकी सीरत से मुतासिर है, लेकिन बाज़ मकामात पे वो कहती हैं कि हम किस तरह से उन्हें नमूने अमल बनाएं, हमारे साथ ये मुश्किलात हैं, तो इस बारे में अगर थोड़ा सा आप आगाह करें।
देखिए, आपने सही कहा कि बाज़ लोग जानबूझ के इस तरह के शुभात डालते हैं जहनों में कि हम जनाब सैयदा को फॉलो कर ही नहीं सकते, उन्हें नमूने अमल बना ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे दौर की खातून नहीं है, हम उनके दौर में नहीं हैं। अब उनके दौर में और हमारे दौर में बहुत फ़र्क है, हमारे तकाजे उनके तकाजे मुख्तलिफ हैं, और बाज़ लोग ना जानने की बिना पर भी, कम इल्मी की बिना पर ये समझने लगते हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है। हमारा कहने का मकसद ये नहीं है कि अगर बीबी बहुत अजीम थी और उन्होंने खुदा की बारगाह में एक बड़ा मकाम हासिल किया है तो हम भी वो मकाम हासिल कर सकते हैं, वो रसूल की बेटी थी तो हम रसूल की बेटी बन सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। कहने का मकसद ये है कि हम जनाबे फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत से अपने लिए दर्स हासिल कर सकते हैं, और हम आज के दौर में भी जनाबे फ़ातिमा को फॉलो कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि वो जो हम बात कर रहे हैं कि जनाबे फ़ातिमा का दौर अलग है, तो देखिए, दौर अलग हो सकता है, ज़माना अलग हो सकता है, शहर अलग हो सकता है, लेकिन क्या हमारे नेकी का मफहूम भी अलग हो गया है? क्या इंसानी अर्जिशें भी बदल गई हैं? क्या जो फ़ज़ाइल और कमालात समझे जाते थे वो आज अपना माना और मफहूम खो चुके हैं क्या? यानी कल अगर सच्चाई को पसंद किया जाता था तो आज इंसानों के दरमियान सच्चाई एक बुराई के नाम से पहचानी जा रही है। अगर इफ़्फ़त और हया, पाकदामनी, सब्र और इस्तकामत, नेकी, रहमदिली, इसार और क़ुरबानी انسان کی خوبیاں سمجھی جاتی تھیں تو آج بھی یہ خوبیاں ہی سمجھی جاتی ہیں. لہٰذا ہم نے ان ارزشوں کو دیکھنا ہے جو ارزش انسانی ہے وہ چونکہ سیم ہے, لہٰذا ہم ان لوگوں کو جو کسی دور میں بھی ان ارزشوں کے عروج کو پا چکے ہیں ہم انہیں اپنے لیے نمونہ عمل بنا سکتے ہیں. تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ گرچہ بہت پرانے دور میں تھیں لیکن بہرحال آج بھی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. اچھا ایک اور اس میں ایک نقطہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم جب کسی کو نمونہ عمل بناتے ہیں نا تو ہمیں دو طریقوں سے اسے نمونہ عمل بنانا ہوتا ہے. ایک یہ کہ ہم اس کے عمل کو بالکل ایز اٹ از فالو کرتے ہیں, یعنی اگر وہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کوئی کام انجام دے رہی ہیں تو ہم بھی وہی کام انجام دیں گے. جیسے جناب فاطمہ نماز کے بعد تسبیح پڑھتی ہیں تو اور وہ تاکید بھی کرتی ہیں تسبیح پڑھنے کی, اور آج ہم سب نماز کے بعد تسبیح جناب سیدہ ضرور پڑھتے ہیں کہ امام صادق کی روایت ہے کہ جس نے اس دو رکعت نماز کو تسبیح کے ساتھ پڑھا وہ بہتر ہے اس 70 رکعت نماز سے جو بغیر تسبیح کے. تو تسبیح جناب سیدہ ایک عمل ہے جو ہم کر سکتے ہیں, ان کی کوئی رحم دلی ہے کوئی انفاق ہے ہم اسے فالو کریں. مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نمونہ عمل میں جو آپ کو ایز اٹ از نہیں اٹھانی ہوتی بلکہ اس عمل کے اندر جو اصول کار فرما ہوتے ہیں جو درس کار فرما ہوتے ہیں آپ نے اس سے سیکھ کر اپنے دور کے مطابق ہی اس سے اپنی زندگی کو سنوارنا ہوتا ہے. جی تو جناب فاطمہ کو جو ہم نمونہ عمل رکھتے ہیں تو اس میں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی زندگی کے کچھ واقعات جو ہم کر سکتے ہیں عمل وہ بالکل کرتے ہیں, لیکن وہ واقعات جو ان کے دور سے متعلق ہے, مثلا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا جو بستر تھا وہ بھیڑ کی کھال تھی یا ان کے تکیے جو تھے وہ کھجور کے درخت کے پتوں سے بھرے ہوئے تھے. تو مطلب یہ نہیں کہ آج ہم کھجور کے درخت کے پتوں سے اپنے تکیے بنائیں اور کہ ہم بی بی فاطمہ کو نمونہ عمل قرار دے رہے ہیں.
اکثر ہماری جو اس وقت بچیاں ہیں نا وہ یہ سوال کرتی ہیں, اور ان کے لیے ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز میں یہ وضاحت کی اس بات کی, کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ نہیں ہم نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بھی آئیڈیل بنایا ہوا ہے اور کسی دوسرے کو بھی ہم نے آئیڈیل بنایا ہوا ہے, تو اس حوالے سے
جی بالکل یہ ہے کہ میں مختصراً بیان کر دوں اس کو بھی کہ جس طرح میں بات کر رہی تھی آپ سے کہ بی بی کے کچھ اعمال ایسے ہوں گے جو ہم اپنے دور اور زمان کے مطابق ڈھالیں گے اس کو. جیسے اگر بی بی گوسفن کی کھال یعنی بھیڑ کی کھال کا بستر استعمال کرتی ہیں تو مراد یہ ہے کہ سادہ زندگی بسر کر رہی ہیں, اپنے شوہر پر بوجھ نہیں ڈال رہی ہیں. تو آج کی عورت بھی سادگی اختیار کرے, تجملات سے دوری اختیار کرے. یا بی بی اپنا شادی کا جوڑا دے رہی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کے مال سے محبت نہ کرے. یہ درس ہے, یہ ہمارے لیے وہ نمونہ عمل ہے. لیکن اگر آج کی بیٹی یہ کہتی ہے کہ ہم بی بی کو بھی اپنا نمونہ عمل بنائیں دوسروں کو بھی بنائیں, تو دیکھیے جب ہمارے پاس بی بی فاطمہ جیسا نمونہ عمل موجود ہے تو پھر کوئی فیلڈ خالی ہی نہیں رہتی, کوئی خانہ خالی ہی نہیں ہوتا جہاں ہم کسی دوسرے کو لا کے بٹھا سکیں. نجو بلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے, آپ ارشاد فرماتے ہیں, لقد کانا فی رسول اللہ کافی لکا فی الاسوہ, یعنی نبی کا جو نمونہ ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے. تو جناب فاطمہ جو خود نبی کی ہی سیرت کا آئینہ دار ہے ہمارے لیے کافی ہے. ہاں ان لوگوں کو ہم ان کے ساتھ ساتھ نمونہ بنا سکتے ہیں جنہوں نے بی بی فاطمہ رسول اللہ اہل بیت کو اپنا نمونہ بنایا ہے, یعنی صاحبان ایمان ہیں. لیکن جن کا راستہ بالکل جناب سیدہ سے مختلف ہے یا مخالف سمت ہے ان کو ہم نمونہ عمل نہیں بنا سکتے. قرآن نے 3 جگہ پہ جب قرآن آیا اسوہ کا ذکر کیا ہے تو وہاں ان 3 جگہ پر لفظ حسنہ استعمال کیا ہے. تو جو لوگ نیک اعمال انجام دے کر کمال انسانیت کو پا چکے ہیں ہم انہی کو اپنا نمونہ عمل بنا سکتے ہیں.
بہت شکریہ تسنیم, آپ نے بہت اچھے انداز میں اسوہ کے معنی ہمارے لیے واضح کیے. اور ناظرین تسنیم کی گفتگو سے یہاں پہ یہ ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ نمونہ عمل ہمارے لیے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہی ہیں, اور ان کے علاوہ کوئی اور نمونہ عمل قرار نہیں پایا جا سکتا. انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں اب اس موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ ہم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کو کس طرح سے اپنی زندگی میں ڈھال سکتے ہیں. تو اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.
مهر مادری بیکرونه میرسه به تو این سلام ها, سلام مادر نمونه، الهی که همیشه سایه به سرم باشه، الهی که بگی این نوکه به سرم باشه، وقتی به هم بگی به سرم منم صدات کنم مادر، بشم همونی که تو میخواست، بشم شبیه علی اکبر. مادر میخوام که خاک پاد بشم مادر، الهی من مادر، الهی من فدات بشم مادر، الهی فدات بشم مادر، بسته که نشدی دستا بیاد بالا، نماز تو طاق عرشه، ای ترانه مادرونه، فاطمیه ها فصل عشق، سلام مادر نمونه، غبار قدم تو فزه شده مادر جا، به کسی رو نزنم هرگز که توی جانا، غبار قدم تو فزه شده مادر جان، به کسی رو نزنم هرگز که توی جانان، توی دلیل خلقت من، توی تو هستی هیدر، بزام سه بچه سیدا به تو تا عبد بگم مادر. مادر تو سایه سر منی مادر، چه خوب مادر منی مادر، چه خوب ما منی مادر، میخوام که خاک پاد بشم مادر، الهی من فدات بشم بشم مادر، الهی من فدات بشم مادر، زنده باشی ایشالله، سالهای سال فاطمیه برا مادر نوکری کنی، الهی من فداد بشم مادر، الهی من
اینجا مرکز مقاومت هست.